नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित छठी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 2,88,000 से अधिक आवासों को मंजूरी दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि ये नए स्वीकृत आवास 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमोदित किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत आवासों की कुल संख्या 13,61,000 से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास के सफर में साथ देने की अपील की है। बंगाली और हिंदी में लिखे इस पत्र में प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों से अपील की है और राज्य के लिए भाजपा के विकास संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस राह पर चलेगा, ये राज्य की जनता के सुविचारित निर्णयों पर निर्भर करता है। भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि इसराइल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इसराइल सुरक्षा समझौतों को अद्यतन करके रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे।
भारत और इसराइल कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं और हमें अपने मजबूत रिश्ते पर गर्व है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना होगा तथा अपने सुरक्षा समझौतों को नया रूप देना होगा। इससे हमें अपनी परियोजनाओं में साथ काम करने और तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्य बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बने वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए जवाब मांगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगी। वे कल बुलढाणा के शेगांव में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का भी उद्घाटन करेंगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। ये सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाफ्टा पुरस्कारों में बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में जीत हासिल करने पर फिल्म बूंग की पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि मणिपुरी फिल्म बूंग ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। झारखंड के चतरा जिले में सिमरिया के पास कल शाम एक एयर एम्बुलेंस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये विमान रांची से दिल्ली आ रहा था। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ये विमान शाम 7:11 पर रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुंबई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 6 पर 254 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन ही बना सकी। विश्व कप में आज पल्ले केले में पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।